रात का क्लास चल रहा था चार ग्यारह 1966 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी अभी रावण राज्य है इसमें सब पतितात्म है एक भी पावन आत्मा नहीं क्या एक भी पावन आत्मा नहीं सब पतित आत्माएं हैं यथा राजा तथा प्रजा मनुष्य सृष्टि की आदि मनुष्य आत्मा पतित है या पावन है पतित है और सभी पतित रावण राज्य वाले राम राज्य वाले देवी देवताओं को माथा टेकते हैं मंदिरों में जाकर और वो पावन देवी देवताएं बैठे भी हैं मंदिरों में कहाँ बैठे हैं मंदिरों में कि मस्जिदों में गिरजाघर में नहीं गुरुद्वारों में नहीं कहाँ बैठे हैं मंदिरों में बैठे हुए हैं तो देखो वो मंदिर में बैठे हैं देवी देवताएं इससे सिद्ध होता है कि बरोबर ये देवी देवताएं सबसे ऊंचे हैं दुनिया में जो भी इबादत के स्थान हैं, उन मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में सबसे ऊंचे मंदिर हैं, सबसे पुराने भी हैं, और उनमें बैठने वाले देवी देवताएं सबसे ऊंचे हैं। किससे किससे ऊंचे हैं गिरजाघर के क्राइस्ट से मुसलमानों के मोहम्मद से गुरुद्वारों के गुरुओं से किस बात में ऊंचे हैं पवित्रता में ऊंचे हैं वो देवी देवताएं सन्यासियों से भी ऊंचे हैं क्यों सन्यासी तो पतित दुनिया को ही छोड़ देते हैं जंगल में चले जाते हैं वहां पवित्र बनने का क्या सवाल परंतु बोला सन्यासी जो जंगल में जाकर पवित्रता धारण करते हैं उनसे भी वो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले देवी देवताएं ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं कि दूर दूर रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं तो भी पवित्र रहते हैं। और अगर सन्यासी इकट्ठे रहे तो पति तो बनेंगे या पावन बनेंगे है? इसी डर की वजह से तो वो जंगल में भाग जाते हैं। कि स्त्री पुरुष साथ साथ में रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? पति तो बनेंगे या पावन रहेंगे? पति तो बनेंगे। तो देखो वो मंदिरों में बैठे देवी देवताएं दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। और ये बात बाप बैठ करके समझाते। कौन सा बाप? धर्म पिताएं भी बाप कहे जाते हैं। धर्म पिता अपने अपने धर्म के पिता, परंतु उन धर्म पिताओं से भी ऊंचे है देवी देवता, सनातन धर्म को स्थापन करने वाला बाप। कौन? जिसे ईश्वर योगीश्वर सनत कुमार कहा जाता है। जिस सनत कुमार के नाम पर देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना होती है, जैसे क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। परंतु आज भारतवासी नहीं जानते हैं कि हमारे धर्म का स्थापक धर्म पिता कौन है। कोई कहते हैं कृष्ण है, कोई कहते हैं राम है, कोई कहते हैं त्रिनेत्री शंकर है, परंतु बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन सा बाप? वही बाप बैठ करके समझाते हैं गीता ज्ञान की बात समझाते हैं कि नर जैसे मनुष्य को नारायण जैसा देवता बनाने वाला एक ही निराकार बाप है, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए पूरे 84 के चक्र की बात को जानता है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वो अपने पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती हैं, और वो निराकार भगवान तो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, इसलिए कभी भूलता ही नहीं। वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिकालदर्शी आत्माओं का बाप। अभी संगम युग में बैठ करके समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि तुमको इतने सुख का वर्षा देने वाला मैं एक ही बेहद का बाप हूँ, जिसके लिए गायन है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो भी देखो कि कितना माथा मारते हैं समझाने में, उसे एक बाप को जान करके भी मान करके भी भूल जाते। अगर वो मनुष्य आत्माएं यहाँ बाप के सत्संग में आएंगी भी तो भी आएंगी, बाप की बनेंगी भी, सरेंडर होंगी तो भी शरीर निर्वाहार्थ, क्योंकि ये सन्यासी भी जो पढ़ते हैं ना, शास्त्र आदि पढ़ते हैं ना, इसलिए पढ़ते हैं कि शास्त्रों की बातें पढ़ करके दूसरों को शास्त्र की बातें सुनाएंगे तो शरीर का निर्वाह होगा। शास्त्रों का पेट का पूजा का धंधा बना लिया, ऐसे ही ये देवता धर्म में आने वाली आत्माएं भी जब शुरू शुरू में बाप के ज्ञान में आती हैं, तो निराकार बाप भगवान के सत्य ज्ञान को देह के निर्वाह का धंधा बना लेती हैं। कौन? बेसिक ज्ञान वाले नाबालिक बच्चे भगवान के या ज्ञान को गहराई से समझने वाले बच्चे है, नाबालिक बच्चे बाप के ज्ञान को गीता ज्ञान को पेट का धंधा बना के बैठ जाते। देखने में आता है नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ब्राह्मणों का संगठन नहीं है जो भगवान के ज्ञान को ब्रह्मा द्वारा सुने हुए ज्ञान को पेट का धंधा बना के बैठे हैं, नहीं है। कौन है? हाँ जी, जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते, उनसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो कहेंगे हम अम्मा कुमार कुमारी। अरे बाप का नाम क्यों नहीं बताते? ये पैसा कमाते हैं क्या? जिनको भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं पेट के लिए पैसा कमाते हैं, तो ये शरीर निर्वाह अर्थ हुआ ना है, इसलिए हुआ शरीर निर्वाह अर्थ हुआ ना। शरीर रूपी जो रथ है वो स्वार्थ के लिए हुआ ना, स्व माने अपने, रथ माने शरीर, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि परमार्थ के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। वो बाप बेहद का बोलता है, ये सब मनुष्य जो भी धंधा करते हैं क्या, ये सब मनुष्य दुनिया के, चाहे इस्लाम धर्म के हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हों, ब्रह्मा के फॉलोअर्स बच्चे हों, अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कह जाते हैं, वो सब मनुष्य जो भी धंधा करते हैं शरीर निर्वाह अर्थ करते हैं। कब? जब अज्ञानी है त्रिसर्जनों में तब करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान बाप आते हैं तो भी जो धंधा करते हैं ज्ञान सुनाने का इसलिए करते हैं है? पेट के निर्वाह अर्थ करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। पीछे उस धंधे से कोई हजार कमाते हैं, कोई सौ कमाते हैं, कोई लाख कमाते हैं और कोई करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं। किसके लिए ये? किसके लिए बना लेते हैं? स्वार्थ के लिए है। तो शरीर निर्वाहार्थ ना, परमार्थ तो नहीं है, है? परमार्थ है या स्वार्थ है? वास्तव में तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके ये पेट का धंधा करना होता है क्या? गृहस्थ व्यवहार का पालन करने के लिए, बीवी बाल बच्चे पालने के लिए ये स्वार्थ व्यवहार का पेट का धंधा करना होते हैं। तो ऐसे पेट का धंधा करने वाले, पैसा कमाने वाले, धनवान बनने से इनके बड़े बड़े महल बन जाते हैं क्या? ज्यादा पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े महल बन जाते हैं। दुनियावी सन्यासियों की बात है या ब्राह्मणों की बात है? ब्राह्मणों की भी बात है। बहुत सुखी रहेंगे। किस लिए बनाते हैं बड़े बड़े महल? कि हम महलों में बड़े सुख से रहेंगे। ये तो होता ही है, पैसे बिगड़ तो कोई सुख हो भी नहीं सकता है। यहाँ इस दुनिया में कहाँ भी पैसे बिगड़ तो सुख हो भी नहीं सकता है। तो देखो देखो, तुम यहाँ इस सत्संग में क्या कमाने आए हो? पैसा कमाने आए हो, महल माणियां बनाने के लिए, या किस लिए आए हो? यहाँ सत्संग में किस लिए आए हो? पैसा कमाने आए हो हैं? ज्ञान धन कमाने के लिए आए हो? किस लिए ज्ञान धन कमाने के लिए आए हो? विश्व कल्याण के लिए ज्ञान धन कमाने आए हो या स्वार्थ के लिए आए हो? विश्व कल्याण में हम इस ज्ञान धन को लगाएंगे और सारे विश्व का कल्याण करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया सारी वसुधा में रहने वाले हमारे कुटुंब के प्राणी हैं, सब मनुष्य आत्माएं हैं, सब मनुष्य आत्माओं के इस बड़े से बड़े कुटुंब का बाप एक है या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ब्रह्मा अनेक हैं। हमारे परिवार का बाप एक है, हमें इस लक्ष्य से यहाँ बाप के साथ सत्य के साथ, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, सत्य बाप के संग में सच्चा सत्संग करने आए हैं, ये तो तुम जानते हो। क्या कौन जानते हैं? तुम जानते हो। तुम किसको कहा जाता है? जो बाप के सन्मुख रहते हैं। ये मुख के सन्मुख, सम्मुख किसे कहा जाता है और विमुख किसे कहा जाता है? सन्मुख बैठे हो और मन के अंदर गालियां चल रही हो, ग्लानी चल रही हो, विपरीत संकल्प चल रहे हो, अनिश्चय बुद्धि के संकल्प चल रहे हो, तो उन सामने बैठने वालों को सन्मुख कहेंगे नहीं कहेंगे? बाहर की दुनिया में जाकर के यहाँ तो सन्मुख बैठते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर के ग्लानी करते हैं, बाप की ग्लानी करते हैं, बाप के परिवार की ग्लानी करते हैं। तो वो सन्मुख बैठने वाले सन्मुख हैं या विपरीत मुख हैं? विमुख हैं, विमुख हैं। तो ये तुम जानते हो कि हम बच्चे जो भगवान के सन्मुख हैं, अंदर से भी और बाहर से भी सन्मुख हैं, वही बच्चे वहां सतयुग में देवी देवताएं बनेंगे। क्या कहा? जो यहाँ अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से सन्मुख है, वो वहाँ सतयुग में देवी देवताएं बनेंगे। अगर बाहर के मुख से सन्मुख होते हैं और अंदर से विमुख हैं, तो सतयुग में देवता नहीं बनेंगे। कोई तो हम में से कोई तो ऐसे हैं जो एकदम विश्व के महाराजा बनेंगे, इतने अंदर बाहर से सन्मुख है, कदम कदम पर सन्मुख है, माना जीवन में जो भी काम करने के लिए कदम बढ़ाएंगे श्रीमत लेकर के चलेंगे, तो हर कदम पर बाप की श्रीमत पर चलने वाले कोई तो महाराजा महारानी बनेंगे। हम ये तो जानते हैं कि हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी अथवा उनके राज्य में आने वाले हम देवी देवताएं हमारे संगठन रूपी महल तो बहुत होंगे। क्या संगठन रूपी महल? एक होगा महाराजा महारानी का कि बहुत महल होंगे संगठन रूपी महल। एक होगा या बहुत होंगे? एक ही होगा। अच्छा, सत्यु के आदि में जो नर से नारायण, नारी से नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले महाराजा महारानी हैं, उनके संगठन में जो राधा कृष्ण इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता जन्म लेंगे, तो बड़े होकर के जब उनको लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लक्ष्मी नारायण, कितने लक्ष्मी नारायण होंगे? आठ। वो हमारे पुत्र पौत्र परपौत्र तरपौत्र नहीं होंगे, होंगे उनके महल नहीं होंगे हैं? तो हमारा एक ही महल होगा या अनेक महल होंगे हैं? ये हमारे तो अनेक महल हो गए, कोई छोटा महल कोई बड़ा महल, कोई छोटा संगठन रूपी महल किला कहो, कोई बड़ा किला कहो, है ना? हमारे बहुत महल होंगे। चार ग्यारह छियासठ की वाणी का तीसरा पेज। और ऐसे ही ये नहीं कहेंगे कि जो हमारे पुत्र पौत्र परपौत्र तरपौत्रे जो पीढ़ी दर पीढ़ी नारायण का टाइटल लेने वाले नारायण दी फर्स्ट सेकंड नारायण दी थर्ड होंगे ना, उनके जो महल होंगे तो उनकी प्रजा के भी महल होंगे। उन नारायणों की जो प्रजा होगी उस प्रजा के भी महल होंगे क्या? अरे उनके अलग संगठन रूपी महल होंगे, होंगे या नहीं होंगे? उनके भी महल होंगे, उनका संगठन अलग होगा। वो प्रजा जो है प्रमाणे प्रकृष्ठ, जा माने जन्म लेने वाली, क्या उस प्रजा ने संगम युग में प्रकृष्ठ रूप से जन्म लेकर के प्रजा वर्ग का व्यवहार पालन किया है संगम में ही। उन सात या आठ नारायणों के फॉलोअर्स बने हैं संगम में, फॉलोअर्स बनते हैं कि नहीं? वो ही वहां जाकर के नारायण और उनकी प्रजा बनती है। तो ऐसे थोड़े ही कि प्रजा के भी संगठन रूपी महल होंगे, होंगे प्रजा के नहीं होंगे? तो ये तो है ना, तुम जो साहूकार बनना चाहते हो, सुखी बनना चाहते हो, पवित्र बनना चाहते हो, तो जितना जास्ती पढ़ेंगे, जितना जास्ती पढ़ करके पुरुषार्थ करेंगे, इतना बड़ा राजा बनेंगे। क्या इससे क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि जो राजा बनेंगे वो ही पढ़ाई पढ़ेंगे। सुप्रीम टीचर है कि पढ़ाई कौन पढ़ेंगे? जो राजा बनेंगे वो पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाई पढ़ करके पवित्र देवी देवता बनेंगे, और जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वो राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? प्रजा बनेंगे। जो यहाँ बहुत ज्ञान धन कमाएंगे ईश्वर का, वो बहुत धनवान बनेंगे, और जो नहीं पढ़ेगा क्या है? इस गांव में बहुत से लोग होंगे जो आपकी बातों को मानते तो होंगे, अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ज्ञान की बात आपकी बहुत अच्छी है, जरूर ईश्वर का ज्ञान है, लेकिन पढ़ने आते हैं तो राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? प्रजा बनेंगे। तो वो थोड़ा भी नहीं आकर के पढ़ते हैं भगवान बाप से, तो इतना धनवान थोड़े ही बनेंगे जितना तुम बड़े धनवान बनेंगे। राजा बड़ा धनवान होता है या प्रजावर्ग के लोग बड़े धनवान होते हैं? राजा बड़े धनवान होते हैं। तो फर्क तो हुआ रहता है ना इस बात का, जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो धनवान बनते हैं, राजा बनते हैं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हैं तो जरूर दूसरों को पढ़ाते हैं, ज्ञान धारण करते हैं तो जरूर दूसरों को भी धारण कराते हैं, तो राजा बनते हैं। परंतु ज्ञान तो लिया, होशियार तो बने, 10 आदमियों के बीच में भाषण करने लग पड़े तो सब कहेंगे बड़ा अच्छा सुनाया है, लेकिन बाप का परिचय नहीं दे पाया। तो राजा बनेगा या धनवान साहूकार बनेगा है? राजा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? साहूकार, प्रजा बनेगा। तो फर्क तो हो गया ना, ज्ञान लेने वालों में भी फर्क हुआ या नहीं हुआ? फर्क तो हुआ। साहूकारी और गरीबी का फर्क तो सब जगह होता है, सतयुग में भी होता है और कलयुग में भी होता है। मर्तबा पढ़ाई के ऊपर है। क्या कलयुग में भी जो ऊंची ऊंची पढ़ाइयां पढ़ते हैं, IAS, PCS, MA, BA, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो मर्तबा तो लेते हैं ना, किस आधार पर? पढ़ाई के आधार पर। परंतु वो सब पढ़ाइयां जो हैं, वो एक जन्म के लिए हैं या अनेक जन्मों के लिए हैं? एक जन्म के लिए हैं। और ये ईश्वर की पढ़ाई अनेक जन्मों के लिए है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ाइयां हैं जिस्मानी पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाइयां हैं? जिस्मानी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी जिस्मानी है, और ये ईश्वरीय पढ़ाई जिस्मानी है या रूहानी है? रूहानी पढ़ाई है, रूह अर्थात आत्मा को पढ़ाई जाती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा, वो बेहद का बाप है, एक जन्म का बाप नहीं है, है? अनेक जन्मों का बाप है कि 84 के चक्कर में हर जन्म का बाप है, है? 84 के चक्र में जो भी प्राप्ति होती है वो कौन से युग में होती है, है? संगम युग में, जब भगवान बाप आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार, वो बाप आकर के बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बेहद 84 जन्मों का सुख शांति का वर्षा देते हैं, मर्तबा देते हैं। तो सारा मदार मर्तबे का पढ़ाई के ऊपर हुआ, क्या पढ़ाई के ऊपर हुआ, पढ़ाई के ऊपर, और किसकी पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई तो है, लेकिन किसने पढ़ाया है, कोई मनुष्य गुरुओं ने पढ़ाया, वो पढ़ाई दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा ने पढ़ाई है, ब्रह्मा ने तो नहीं पढ़ाई, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट पढ़ाते हैं, नहीं वो भी नहीं पढ़ाते, कौन पढ़ाता है, है? जो रूह की स्टेज में टिक जाते हैं, अपनी देह को भूल जाते हैं, क्या याद करते हैं कि मैं ज्योतिबिंदु निराकार आत्मा हूँ, ऐसी स्टेज में अंत में टिक जाएंगे, विनाश काल में महामृत्यु के समय, तो अंत मते सोगते हो जाएगी, वो आत्मा है किसका बच्चा बनेंगे 84 जन्मों के लिए, देहधारियों के बाप का, देहधारी बापों का बच्चा बनेगी, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का जन्म जन्मांतर बच्चा बनेगी, या परमपिता परमात्मा का ज्ञान सूर्य का बच्चा बनेगी, 84 जन्मों में भी सूर्यवंशी बनकर के रहेंगे, या मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष में दाई ओर या बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होकर के रहेंगे, सूर्यवंशी बच्चे बन के रहेंगे। तो देखो, तुम बच्चे हो जो कभी भी और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हो, क्यों क्यों नहीं कन्वर्ट होते हो, क्योंकि तुम एक से ज्ञान सुनते हो, क्या तुम एक से ज्ञान सुनते हो, भगवान बाप भी कहते हैं एक से ज्ञान सुना तो अभिविचारी ज्ञान, और अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान, जो विविचारी ज्ञान लेंगे वो विविचारी धर्मों में जाएंगे, क्या कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, हैं? विविचारी धर्मों में, विविचारी धर्म माने द्वैतवादी, द्वापर युग से आएंगे, और द्वापर युग से आने वाले जो और धर्म पिताएं हैं उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो कहते हैं भगवान गीता ज्ञान दे करके स्वधर्मे निधनम स्वीय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में है मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म बहुत दुख देने वाला, बहुत भयभीत करने वाला है, क्या वो धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि
तुमको अपने धर्म में कन्वर्ट करके भारतवासियों को, वो तुमको दास दासी बना के रखेंगे या राजा बनाएंगे? दास दासी बना करके रखेंगे। पराधीन बनाएंगे या स्वाधीन बनाएंगे? पराधीन बनाएंगे। और पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन बनते हैं उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो देखो, ये पढ़ाई तो तुम यहाँ पढ़ते हो। क्या पढ़ाई? अव्यभिचारी पढ़ाई। क्या? देवता पहले जन्म में बनते हैं तो जो पहले पत्ते हैं सृष्टि रूपी वृक्ष के राधा कृष्ण, वो दृष्टि से विविचारी बन रहे हैं या राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है? इक्कीस जन्मों के लिए वो आत्माएं एक दूसरे के प्यार में रहती हैं। व्यभिचारी प्यार हुआ जन्म जन्मांतर का या अव्यभिचारी प्यार हुआ? है अव्यभिचारी प्यार हुआ। तो तुम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो जन्म जन्मांतर पवित्र रहने के लिए। अच्छा, पढ़ाई पढ़ते हो किस लिए? कि हम सतयुग का राजा रानी महाराजा महारानी फिर से बने। अच्छा, वो महाराजा महारानी या राजा रानी बनने के लिए सतयुग त्रेता में कौन सा गुण अवश्य चाहिए? है पवित्रता चाहिए। क्या? हमारा नारा ही है पवित्र बनो योगी बनो। तो इस पढ़ाई में, पढ़ाई पढ़ने का रिजल्ट पवित्रता जरूर देखने में आनी चाहिए। आँखों से, मुख से, कर्म इंद्रियों से कमल फूल के समान पवित्रता दिखाई दे। तो पवित्रता के लिए तुम बच्चों को मूल बात बताते हैं, ऐसी देवताओं जैसी पवित्रता धारण करने के लिए जिनके मंदिर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे देवी देवताएं नंबर वार बनने के लिए क्या करना पड़े? है बनेंगे तो नंबर वार, पढ़ाई भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए या नहीं? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है। बीज पवित्र होगा तो वृक्ष भी पवित्र होगा। तो मूल बात बताते हैं कि याद में रहो तो पति से पावन बनेंगे। कैसे बनेंगे? हैं? याद से बनेंगे। किसकी याद से? कौन से बाप की याद से? शिव बाप की याद से। शिव आत्मा का नाम है, उसका शरीर तो होता ही नहीं है। तो जो बाप है, आत्मा है,
वो इस सृष्टि पर आकर के स्वर्ग बनाता है, बनाता है कि नहीं? स्वर्ग स्वस्थिति से बनाता है, सदा काल की स्वस्थिति से बनाता है या देवान में रहकर बनाता है? है सदा काल की स्वस्थिति, जिसका यादगार शिव के मंदिर में रखा हुआ है। कैसी स्वस्थिति? पांच विकारों में सबसे तीखा विकार कौन सा है? काम विकार। सबसे तीखी इंद्रिय कौन सी है काम विकार के बारे में? काम इंद्रिय। वो काम इंद्रिय शिव के मंदिर में कहां और किसके साथ रखी हुई है? है? जलाधारी के साथ रखी हुई है। जलाधारी का रूप जो है स्त्री रूप है या पुरुष रूप है? स्त्री रूप है। तो स्त्री और पुरुष परम पुरुष है, परम पुरुष है। पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और शय माने शयन करने वाली, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली। कौन? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आनंद लेने वाली कौन? आत्मा। उसमें नंबर वन परमात्मा कौन है? नहीं, प्रजापिता का अगर यादगार होता मंदिरों में शिवलिंग तो उसे शंकर लिंग कहते, राम लिंग कहते, क्या कहते हैं? शिवलिंग। इससे साबित होता है कि जब तक शिव इस शरीर के द्वारा 100% पूरी शक्ति से प्रत्यक्ष न हो संसार में, क्या तब तक वो शंकर लिंग है या शिवलिंग है? नहीं, पूरी शक्ति से प्रत्यक्ष हो तो एवर प्योर, या अधूरी शक्ति से वो लिंग प्रत्यक्ष होता है तो भगवान। और जब तक अधूरी शक्ति है तो देवता का लिंग है या भगवान का शिव का लिंग है? देवता का लिंग, देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती। चाहे वो महादेव शंकर का ही लिंग क्यों न हो, उसकी भी पूजा नहीं होती। मंदिर में किसकी पूजा होती? शिवलिंग की पूजा होती। तो परम पुरुष कौन हुआ? शंकर, महादेव, आदि देव, आदम या परम पुरुष, परमात्मा, सुप्रीम सोल है शिव बाप। वो एवर प्योर है, क्या वो आत्मा एवर प्योर है? भले एवर प्योर है परंतु सन्यासियों में सल परम धाम में पड़े रह करके सदाकाल वो इस सृष्टि पर परम पुरुष के रूप में उसका गायन, उसका पूजन, उसका यादगार मंदिर बनेगा? नहीं बन सकता। इसका साबित होता है कि वो परम पुरुष, परम पवित्र, एवर प्योर, एवर प्योरिटी का इस सृष्टि पर आकर के प्रूफ देता है। क्या प्रूफ? क्या प्रूफ है? शिवलिंग
24 घंटे भी लगातार स्त्री रूप के साथ रह करके भी, प्रवृत्ति में रह करके भी, इसमें रहकर प्रमाणे प्रकष्ट रूप वृत्ति माने चारों तरफ से घेर कर, क्या जैसे सागर है, पृथ्वी माता है, सागर पिता है, ज्ञान सागर, तो पृथ्वी रूपी माता को जो 1/4 हिस्से में फैली हुई है, कौन? पृथ्वी, और 4 गुने हिस्से में, 3 गुने हिस्से में कम से कम सागर फैला हुआ है, तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? पृथ्वी माता माता है, और सागर पिता है, कौन किसको गोद में लेगा? पिता माता को गोद में लेकर बैठा है, माता रचना है ना, पहली पुरुष की पहली रचना कौन होती है? माता, तो माता जो जगत माता कही जाती है, जगत जननी कही जाती है, उस जगत जननी धरणी माता को, धरती माता को, या प्रकृति कहो, उस प्रकृति माता को गोद में लेकर बाप बैठा हुआ है। वो तो जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है, लेकिन चैतन्य माता पिता कौन है इस सृष्टि में? पहले पहले सृष्टि के आदि में पहले पहले माता पिता कौन है? जगदम्बा और जगत पिता। गाया हुआ है शास्त्रों में, जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरो, जो सारे जगत के, सारे विश्व के मात पिता हैं, एडम और ईव के रूप में, शारीरिक रूप में माने जाते हैं, उनमें वो निराकार शिव प्रवेश होता है, और इस सृष्टि के उन बड़ल्ले बच्चों को, किनको है, क्या कहते हैं तेलुगु में, पिद्द बच्चा और हाँ चिन्ह बच्चा, बच्चा माने पिल्ललू, हाँ पिद्द पिल्ललू, चिन्ह पिल्ललू, पिल्ललू की पिल्लली, अच्छा तो जो भी, तो जो बड़ल्ले बच्चे हैं सुप्रीम सोल बाप के, वो हैं आदम और हवा। अंग्रेजों में उन्हें कहते हैं अंग्रेजी में एडम और ईव, और भारत में उनको कहते हैं जगतम पितरम, जगत पिता जगत माता। तो वो जगत पिता माता को प्रैक्टिकल में अपनी रचना बनाता है, पहली पहली रचना किस लिए बनाता है? कोई भी माँ बाप, कोई भी बाप स्त्री किस लिए बनाते हैं? सृष्टि पैदा करने के लिए। अरे स्त्री किस लिए बनाते हैं? सृष्टि पैदा करने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत करने वाला कौन है इस सृष्टि पर? आदम। आदम में भी वो आत्मा कौन है जो सृष्टि निर्माण करने वाली है, सारी सृष्टि का, जगत का मूल पिता है, आदम की आत्मा या उसमें प्रवेश करने वाले सुप्रीम सोल बाप निराकार की आत्मा है, वो निराकार बाप इस सृष्टि पर आता है तो किसके ऊपर आकर फिदा होता है?
हवा,
हवा के ऊपर फिदा होता है, आदम में आता है। आदम है पांच तत्वों का पुतला, क्या पांच तत्वों का पुतला। तो आदम माशूक हुआ या आशिक हुआ? माशूक हुआ। और सुप्रीम सोल शिव आशिक हुआ। आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूका आशिक के पीछे भागती है? माशूक के पीछे आशिक भागता है। तो वो इतने ऊंचाई पे रहने वाला, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, इतना ऊंच और पांच तत्वों से बने उस पुतले में भाग कर आता है। दुनिया में भी क्या होता है, जो भी पिता बनने वाले होते हैं पुरुष, कोई को मासूका बनाते हैं कि नहीं है, और उसके पीछे भागते हैं या नहीं भागते हैं। तो शुरुआत किसने की? शिव बाप ने शुरुआत की। इसीलिए कहा गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। क्या जिस रास्ते पर मैं चला हूं जीवन में, उसी रास्ते पर इस दुनिया के सब पुरुष, सब प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े उसी रास्ते पर चलते हैं। क्या बंदर किसके पीछे भागता है? है? अरे बंदर है, किसको माशूका बनाता है? बंदरिया को बनाता है। सिर्फ मनुष्य मात्र की बात नहीं है, सभी प्राणी मात्र की बात है। एक भगवान को फॉलो करने वाले हैं। तो देखो, भगवान बाप जब आते हैं तो मूल बात बच्चों को बताते हैं कि जो भी इस मनुष्य शक्ति में मनुष्य हैं, वो नंबर वार हैं, छोटे बड़े या सिर्फ एक जैसे हैं, नंबर वार है। उसमें बड़े अर्थात पावरफुल कौन और कमजोर कौन बनते हैं? जो पावरफुल मेरी आत्मा रूपी मनुष्य आत्माएं हैं, वो मेरी याद में रह करके पावरफुल बनती हैं। कैसे? मेरी याद में रह करके पावरफुल राजाएं बनते हैं। ये राजाओं की पावर दुनिया में कोई भी धर्म पिता, ब्रह्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं नहीं दे सकते। ये राजाई की पावर कौन देता है? सुप्रीम सोल ही आकर के पढ़ाई पढ़ा करके राजयोग की ये आत्माओं में पावर भरता है, सर्वशक्तिवान बनाता है। सर्वशक्तिवान के बच्चे कैसे होंगे? सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो तो बिंदी है। सुप्रीम सोल शरीर तो है नहीं, तो कुछ कर तो नहीं सकता है? कर सकता है, बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बच्चे तो शरीर वाले हैं, देह धारण करने वाले हैं, या सदा निराकार हैं, शरीर धारण करने वाले। तो बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे, रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के, वो प्रैक्टिकल शक्ति धारण करने वाले हैं। क्या प्रैक्टिकल में मास्टर शक्तिवान, सर्व शक्तिवान है। मैं सिर्फ शक्तिवान का टाइटल लेता हूँ, सर्व शक्तिवान, लेकिन छोरी है, मेरी आत्मा प्रैक्टिकल नहीं है। माना भगवान करता है या अकरता है? है अकरता है। करने वालों को मास्टर कर्ता कहा जाता है, प्रैक्टिकल कर्म करने वाला। तो भगवान सिर्फ आकर ज्ञान की थ्योरी बताता है या प्रैक्टिकल करके दिखाता है? है थ्योरी बताता है। माना वो ज्ञान का अखूट भंडार है। भगवान बाप क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। ऐसा अखूट भंडार जिसमें से सारा ही ज्ञान का भंडार निकाल लिया जाए तो भी संपूर्ण ही बचता है, वो कभी खाली होता ही नहीं। अखूट ज्ञान का भंडार है। क्या वो हमको आके क्या देता है? वो सुप्रीम सोल आता है सृष्टि पर, हमको क्या देता है? मेलमारियां देता है, है? सोना चांदी देता है, क्या देता है? ज्ञान का, मन सच्चाई का भंडार देता है। अब लेने वाले जो पात्र हैं, आत्माएं, कोई छोटे कोई बड़े, बड़े हैं तो किस आधार पर बड़े हैं? ज्ञान में बड़े हैं तो वो बड़े पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, ऑलराउंडर पार्टधारी होंगे। और छोटे होंगे तो कम जन्म लेने वाले होंगे या ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले होंगे? बड़े से बड़े पार्टधारी होंगे तो हीरो हीरोइन होंगे, और छोटे पार्टधारी होंगे तो छोटा मोटा पार्ट बजाएंगे। क्योंकि ज्ञान की शक्ति थोड़ी भरी है या ज्यादा भरी? थोड़ी भरी। तो सारा मदार पढ़ाई पर है और पढ़ाई का रिजल्ट पवित्रता है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। क्या कैसे होते हैं? पवित्रता की ताकत से। देखो जालंधर की कथा आती है, सुना नाम जालंधर का? है नहीं सुना? कोई कोई नहीं सुना, क्या करें? भारत का विदेश है दक्षिण भारत, तो विदेशी जो विदेश में जन्म लेने वाले हैं वो उतना शास्त्र आदि नहीं पढ़ते, भाषा भी दूसरी। कोई बात नहीं, भगवान बाप कहते हैं कि मैं तो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। क्या हर धर्म में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सुखदायी आत्माएं, उन आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ अंतिम जन्म में और उनको ही पढ़ाता हूँ। तो क्या पढ़ाई पढ़ाता हूँ? पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, राजाई की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। उस पढ़ाई में जो जितने बड़े प्रैक्टिस करने वाले बनते हैं राजयोग की पढ़ाई का, वो उतने बड़े राजा, उतने बड़े देवता बनते हैं। याद में रहे तो पतित से क्या बनते हैं? पावन देवता बने। याद में नहीं रहेंगे तो इतना पतित से पावन भी नहीं बनेंगे। क्या? किसकी याद में? इवर प्योर की याद में। इवर प्योर सिर्फ कहने के लिए या प्रैक्टिकल में? इवर प्योर प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसा शरीरधारी मुकर्रर रथधारी जिसमें वो पवित्रतम, क्या एवर प्योर सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है, ज्ञान सुनाता है, उसका ज्ञान सुन करके जो पवित्र बनते हैं देवी देवताएं जैसे, वो फिर जो भी सेंटर्स में आते हैं इस समय संगम में, तो पहले पहले मूल बात उनको देने की ये है कि हम जो नॉलेज देते हैं ईश्वर की नॉलेज है, वो अगर पवित्र नहीं रहेंगे नॉलेज लेने वाले, या 5-7 रोज आए करके समझ करके फिर जा करके घर में अपवित्र बनेंगे। क्या क्या पवित्र रहने की जो नॉलेज देते हैं वो नॉलेज लेकर के 5-7 रोज नॉलेज लेते हैं और फिर जाकर के घर में अपवित्र बनते हैं, तो नॉलेज जब निकल जाएगी, सारी नॉलेज निकल जाएगी, अपवित्र बनने से क्या होगा? सारी नॉलेज बुद्धि से गायब हो जाएगी। इसलिए पहले यहाँ आकर के प्रतिज्ञा करो, दिल से प्रतिज्ञा करो या बाहर से बोल दो? दिल से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। स्टाम्प पेपर पर सिर्फ लिखने की बात नहीं है, वो तो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए है, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए है कि यहाँ जितने आते हैं वो सब कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? पवित्रता की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि यहाँ जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जितने दिन भी पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर घर में जाकर के अपवित्र बन जाते हैं, तो सारी नॉलेज बुद्धि में से है निकल जाती है। इसलिए पहले पहले यहाँ आकर के प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप कहते हैं ना, तुम्हारा बेहद का बाप तुम्हारे से पूछते हैं। ये हद के बाप तो 84 जन्मों में 84 मिले, वो हद के बाप या बेहद के? हद के। और ये बेहद का बाप है, माना जन्म जन्मांतर का बाप है। वो बेहद का बाप तुम्हारे से पूछते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान को मेरे से समझो, मेरे द्वारा समझो। माना दो बेहद के बाप हैं, एक मीडिया है और एक ज्ञान देने वाला है। क्या? एक मीडिया और दूसरा देने वाला। तो मेरे द्वारा समझो, वो बाप क्या कहा? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहा है वो बाप, मैं बाप नहीं बोला, वो बाप। हम उनके बच्चे हैं। क्या?
आने वाला
पार्ट
कौन से सन के इस तरफ इशारा किया? कौन सा सन? 76। वो बाप हमारे द्वारा पूछते हैं, हमारे माने एक या ज्यादा? हमारे माने एक, हमारे माने ज्यादा, मेरे माने एक। तो हमारे द्वारा पूछते 66 की मुरली 66 की, वो बाप हम उनके बच्चे हैं, हमारे द्वारा पूछते हैं, माने किसके द्वारा? ब्रह्मा और है शंकर के द्वारा। द्वारा जो है वो मीडिया होता है या बोलने वाला होता है?
मीडिया।
तो वो बाप कौन? निराकारी बाप। हाँ हाँ, राम में ही निराकारी होता है। आते हैं तो आप समान बनाते हैं ना, आप समान निराकारी बनाएंगे या ऐसे ही चले जाएंगे? निराकारी बनेंगे। तो वो बाप निराकारी बाप जो आप समान बनाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वो बाप हमारे द्वारा पूछते हैं, माने किनके द्वारा? राम और कृष्ण के द्वारा। हमारे द्वारा पूछते हैं कि हे बच्चे, बाबा ऐसे पूछते हैं। वो बाबा किसको कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। वो बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम पवित्र रहेंगे क्या? पूछते हैं बच्चों से, तुम जो बाप के सन्मुख आकर के 7 दिन का कोर्स लेकर के या भट्टी करके बाप के सन्मुख आते हैं, दुनिया में भी बच्चे पैदा होते हैं तो 9 दिन पेट में रहते हैं ना, है? रहते हैं, वहीं खाना वहीं पीना वहीं सोना, कि पेट से बाहर निकल जाते हैं? पेट में ही रहते हैं। तो वो 9 दिन की भट्टी करने के बाद तुम बच्चे जब ज्ञान की दुनिया में आते हो, ज्ञानी बनकर बाप के बच्चे बनकर पैदा होते हो, तो वो बाप हमारे द्वारा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तुम पवित्र रहेंगे है? मेरे द्वारा आकर सुनते तो हो, लेकिन पूछते हैं, मेरा ज्ञान सुन करके तुम पवित्र रहेंगे? अगर पवित्र रहेंगे तो फिर देवताई गुणों की धारणा भी अच्छी होती रहेगी। कब? जब पवित्र रहेंगे। और फिर पवित्र रहेंगे तो फिर हम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, और जब मालिक बनेंगे देवता बनेंगे तो वहां भी तुमको याद करना होगा। क्या याद करना होगा? बाप। देवताएं बाप को याद करते हैं? बाप का ज्ञान देवताओं को होता है? तो वहां भी तुमको याद करना होगा। किसको याद करना होगा? अरे पहली पढ़ाई क्या है? आत्मा। वहां भी तुमको क्या याद करना होगा? कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, देह की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप बहुत है। क्या? संगमयुगी स्वर्ग में भी तुम आत्म की स्थिति में रहेंगे,
क्या संगम युग में ही तुम देवात्माएं संसार में प्रसिद्ध हो जावेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे। तुमको अपनी आत्मा याद करना होगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप बहुत है। वो पाप कैसे भस्म होंगे? याद से। जो पाप किए हैं देह की याद में किए हैं, देह की कर्मेंद्रियों से किए हैं, या निराकार स्टेज में रहकर किए हैं? देह की याद में, देह की कर्मेंद्रियों से पाप किए हैं, तो फिर क्या करना पड़े? निराकार आत्मा को याद करना पड़े। पापों को भस्म करने के लिए तुम्हें अपनी निराकार आत्मा, निराकार आत्मा के बाप निराकार शिव को याद करना पड़े। योग भी सीखना होगा। क्या सीखना होगा? योग भी सीखना होगा। तुम योगी हो, वियोगी नहीं हो। क्या तुम रागी हो, वैरागी नहीं हो? क्या अंतर होता है? रागी माने प्रेमी और वैरागी माने है प्रेम की दुनिया से दूर जंगल में भाग गए। तो तुम क्या हो? रागी हो, वैरागी नहीं हो। योग सीखते सीखते, कैसा योग? जैसा मंदिरों में शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है, कैसा योग? कि स्त्री पुरुष साथ साथ रहें, कर्मेंद्रियों से भी साथ साथ रहें, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहें। ऐसे योगी हो, ऐसा योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए, क्या बुद्धि योग नीचे आ गया, गड्ढे में चला गया, तो सारा ज्ञान उड़ जाएगा। इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो मन बुद्धि इंद्रियों में जाती है या नहीं जाती है? है, जाती है। और इतना जाती है कि पुरुष इंद्रियों से सुख भोगते भोगते अंतिम समय में मृत्यु के समय क्या याद करता है? अंतमते सोगते। पुरुष स्त्री के अंग को याद करने लग पड़ता है अंतमते सोगते, तो वो ही गति मिल जाती है। स्त्री को याद करेगा अंत में तो कौन सा जन्म लेगा? स्त्री का जन्म लेता। ये पुरुष की गति हो गई। और स्त्री की क्या गति? सारा जीवन पुरुष के अंगों से सुख भोगा तो अंतिम मृत्यु के समय क्या याद आएगा? वो ही पुरुष अंग याद आएंगे तो काहे का जन्म मिलेगा? पुरुष का जन्म मिलता है। तो देखो याद की कितनी बड़ी शक्ति है। क्या सारा मदार काय के ऊपर हुआ? याद के ऊपर हुआ। तो अभी जो बाप तुमको योग सिखाते हैं, क्या कैसा योग? भले शारीरिक इंद्रियों के साथ रहो लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहो। जैसे साइकिल सीखने वाला साइकिल सीखता है, बार बार गिर जाता है, तो क्या साइकिल सीखना छोड़ देता है? है? उसको हारा हुआ कहेंगे जो साइकिल छोड़ता ही नहीं सीखना। हारा हुआ कहेंगे या जीत पाने वाला कहेंगे? हारा हुआ तो नहीं कहेंगे, वो तो जीतने के प्रयास में लगा है ना। तो तुम्हाने जो योग सीखा है, अगर बुद्ध योग नीचे आ गया, गड्ढे में चला गया और उस नीचे की स्मृति में तुम्हारा लगाव लग गया, अटैचमेंट हो गया। क्या अटैचमेंट हो जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बुद्धि योग अगर ऐसे नीचे आ गया और तुमने योग लगाना छोड़ दिया तो क्या होगा? जो अभी तक पुरुषार्थ किया है वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। क्या अभी तक पुरुषार्थ किया? ज्ञान सुनने का, दिव्य गुणों की धारणा करने का, ईश्वरीय सेवा करने का पुरुषार्थ किया ना, क्या होगा उसका रिजल्ट? वो साहब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी में सारी आत्मा बुद्धि रूपी मन बुद्धि रूपी आत्मा चली जाएगी, आत्मा देह अभिमानी बन जाएगी। इसलिए पहले पहले यहाँ है ही कायदा कि तुम पवित्र ज्ञान सुनेंगे। क्या कायदा है? माना एक बाप से सुनेंगे। पवित्र ज्ञान माने एक बाप से सुनेंगे, कोई दूसरे से ज्ञान नहीं सुने। नहीं तो बहुत ऐसा होता है, भट्टी करके जाते हैं, थोड़े दिन क्लास करते हैं, फिर आपस में लेन देन करते हैं। वो दूसरे को सुनाता है, अरे तुम्हें तो मालूम नहीं है, तुम तो अभी आए हो, हम तो जानते हैं वहाँ क्या होता है। वो जो शंकर जी महाराज है ना, वो क्या क्या करता है, सारी उल्टी पलटी बातें सुनाएंगे। तो देखो अगर दूसरों से ज्ञान सुना तो तुम्हारा ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक व्यभिचारी बनती जाती है या अभिचारी बनकर रहती है? है? नीचे गिरती जाती है, व्यभिचारी बनती जाती है। तो जो भी तुमने योग सीखा है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए यहाँ कायदा है कि तुम पवित्र ज्ञान सुनेंगे। क्या पवित्र ज्ञान माने एक बाप से सुनेंगे, एक बाप को पहचान के सुनेंगे या बिना पहचाने सुनेंगे? है एक बाप से पहचान करके सुनेंगे। किसको पहचान के? है बाप को ज्ञान पहचान करके। ब्रह्मा कुमारियों ने बाप को नहीं पहचाना, क्यों? वो कहती क्यों है, हम आत्मा, हमारे बाप परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु, तो पहचाना नहीं है। अरे आत्मा नहीं निराकार है, अम्मा का ज्ञान है, माने ब्रह्मा में जो ज्ञान सुनाया वो ब्रह्मा ने सुनाया, निराकार ने सुनाया। ठीक है, सुनाया तो निराकार ने, लेकिन जो निराकार ज्ञान आकर के सुनाता है उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? है पहचान लेंगे जो बाबा को, वो एक भगवान से सुनेंगे या शैतानों से भी सुनेंगे? है भगवान तो ऊंचते ऊंचे, ऊंचते ऊंचे सुनाने वाला गुरु टीचर मिल गया तो दूसरे से क्यों सुनेगा? क्या जब ऊंचे से ऊंचे में अनिश्चय आएगा, संदेह आएगा, अविश्वास पैदा होगा, तभी तो दूसरों से सुनेगा। नहीं समझा? दूसरों से सुनेगा तो व्यभिचारी ज्ञान हो गया, पवित्र तो फिर नहीं रह सकेंगे। क्या अगर दूसरों से सुना तो क्या रिजल्ट होगा? फिर पवित्र नहीं रह सकेंगे। पवित्रता कहाँ तक? इंद्रियों तक सीमित है पवित्रता, कर्मेंद्रियों तक सीमित है, ज्ञानेंद्रियों तक सीमित है, या कर्मेंद्रियों परे परे, ज्ञानेंद्रियों से भी परे मन बुद्धि तक पवित्रता होनी चाहिए। हाँ, इंद्रियां सन्यासियों के मिसल पवित्र बना ली अलग होकर के जंगल में जाकर के, या जेल में रहे 10 साल। कितने साल रहे? 10 साल। और बाहर आए तो दिन हांकने लगे, हम 10 साल पवित्र रहे हैं। तो ये वास्तविक पवित्रता नहीं है। असली पवित्रता जो है वो शिव के मंदिर में दिखाई गई है, जो शिव के मंदिर सारी दुनिया की खुदाइयों में मिले हैं और दुनिया की सबसे जास्ती तादाद में मिले, वो पवित्रता। कैसी? जैसी पवित्रता लिंग रूप पुरुष स्त्री रूपिणी माता के साथ पड़ा हुआ है, और उस स्टेज में रह करके भी आत्मा पवित्र बनी रहे, उपराम बनी रहे, ऐसी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है या बिना प्रैक्टिस के होगा? प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म हमने प्रैक्टिस की है देह का संग करने की, देह का सुख भोगने की, देह की इंद्रियों से सुख भोगा है। देवता बने तो भी ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगा, और द्वापर से मनुष्य बने तो भी कर्म इंद्रियों से सुख भोगा। तो हमारी आदत पड़ी हुई है, अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है जन्म जन्मांतर का। तो क्या करना है? उल्टा करना है या जैसा करते रहे वैसा ही करना है? उल्टा करना है। 63 जन्म हम खास देह की याद में रह करके सुख भोगा, अभी क्या करना है? देह को भूलना है, विदेही बाप का बच्चा बनना है। क्या? विदेही बाप जो निराकारी बाप है उसका बच्चा बनना है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। क्या? ये जो माया का बड़े से बड़ा रूपक काम विकार है, काम इंद्रियों के द्वारा, उस इंद्रिय जीते जगत जीत बनना है या नहीं बनना है? है? जगत जीत बनेंगे तो देवता बनेंगे, इंद्रियों को नहीं जीतेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। जीत जो है युद्ध किए बगैर हो जाती है, युद्ध किए बगैर जीत या हार होती है, है? तो युद्ध करने वाले तुम रूहानी योद्धा हो। कैसे योद्धा? रूहानी योद्धा हो, जो दैहिक सुख है माया का सुख है, प्रकृति के 5 तत्वों का सुख है। किसका सुख है? प्रकृति। पर माने दूसरा, कृति माने कार्य, ये दूसरों का कार्य है। कौन दूसरों का? दूसरे धर्म पिताओं ने सिखाया है। क्या? कर्मेंद्रियों से सुख लेना, जो कर्मेंद्रियां है ना उनसे सुख लेने का जो कर्म है किसने सिखाया? कब से शुरू हुआ? द्वैतवादी द्वापर युग से। द्वैतवादी युग है, द्वापर से दूसरे दूसरे जब धर्म पिताए आए, दूसरे दूसरे धर्म आए, दूसरा दूसरा मत आया, दूसरे दूसरे कुल आया, दूसरी दूसरी भाषाएं आई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 बढ़ते गए या कम हुए? बढ़ते गए। तो ये पर को छोड़ना है, ये सारी प्रकृति है। पर है रावण। कौन? रावण। और हम तो भगवान राम के बच्चे हैं, त्रेता वाला राम नहीं, जो फेल हो गया फिर त्रेता में राम बना, नहीं,
कौन सा राम? संगम युगी राम। रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। क्या योगी लोग किसकी याद में रमण करते हैं? आत्माओं की बाप की याद में रमण करते हैं या आत्माओं का बाप जो रथ में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में, उसकी याद में हम रहते हैं और रमण करते हैं? देह की इंद्रियों के सुख में नहीं, अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। जिस अतीन्द्रिय सुख का गायन शास्त्रों में है कि अतीन्द्रिय का सुख का अगर वर्णन पूछना हो तो किससे पूछो? 16,000 गोप गोपियों से पूछो जो भगवान बाप के साथ साकार में रह करके साकार इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियों से, आंखें क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। इन ज्ञान इंद्रियों के संग से, साकार एक बाप के संग से, चाहे कर्म इंद्रियों से, एक बाप के संग से क्या करते हैं? योग सीखते। हमारा योग भगवान बाप के साथ प्रवृत्ति मार्ग का योग है या निवृत्ति मार्ग का योग है? प्रवृत्ति मार्ग का योग। ये शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है, निराकार और साकार की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में रह करके और प्रवृत्ति का हम योग सीखते हैं और उस योग में हम माया से युद्ध करते हैं। क्या करते हैं? माया से युद्ध करते हैं। माया का बड़े से बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? काम विकार। तो काम इंद्रियों से हम उस काम विकार से युद्ध करते हैं। युद्ध करने का अखाड़ा होता है ना, बड़े बड़े सन्यासियों का अखाड़ा होता है, अखंड आनंद स्वामी का अखाड़ा, वो तो सन्यासी है। और हमारा तो, हमारा प्रवृत्ति मार्ग का अखाड़ा है। हम उसमें धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? युद्ध क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कौन सा धर्म क्षेत्र? स्वधर्मे, आत्मा का धर्म। कौन से धर्म में टिकते हम? उन कर्मेंद्रियों से युद्ध करते हुए भी हम कौन से युद्ध में टिकते हैं? है? कौन से धर्म में रहते हैं? स्वधर्मे, स्वधर्म में रहते। उस धर्म में रहते हुए हम युद्ध करते हैं और हमारा भगवान बाप कहते हैं विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या तुम बाप के बच्चे हो ना? बाप के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को बाप का जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसे ही हम बेहद बाप के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल में हैं। वो बाप प्रैक्टिकल में शरीर रूपी रथ में आया हुआ है या निराकार है? प्रैक्टिकल रथ में आया हुआ है। हम उस बाप के बच्चे हैं और वो बेहद के बाप के बच्चे, जो बेहद के दो बाप हैं, एक निराकार आत्माओं का बाप और एक साकार मनुष्यों का बाप। पांच तत्व से बने हुए शरीर रूपी मनुष्य रथों का बाप, मानवीय रथों का बाप, दोनों इकट्ठे हो गए। प्रवृत्ति हुई या निवृत्ति? प्रवृत्ति है। हम उस माता पिता के बच्चे हैं।
जो एक ही शरीर में परम ब्रह्म और परम पिता दोनों कंबाइंड होते हैं, उसके हम बच्चे। यादगार शिव के मंदिर में है। क्या यादगार है? शिवलिंग और जलाधारी स्त्री करो, वो पहली पहली स्त्री जगदम्बा और पहला पहला पुरुष जगत पिता आदम। हम आदम और हवा के बच्चे हैं, तो हम जिसके बच्चे हैं उसने जो कर्म किया है इंद्रियों को जीतने का, इंद्रजीत बन करके जगतजीत बना या नहीं बना है? गाया जाता है, वो एक ही गाया जाता है। क्या? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व धर्मों का नाथ स्वामी एक ही बनता है। कोई भी इस्लामी मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले कितने भी दुनिया के हिस्ट्री में बड़े बड़े आततायी हुए हों, महत्वाकांक्षी, कोई ने भी विश्व के ऊपर राजाई नहीं प्राप्त कर पाई। ये राजाई, विश्व के ऊपर जीत पाने की राजाई एक बाप ही सिखाते हैं, जिसे राजयोग कहा जाता है। उस राजयोग को सीखने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले और पढ़ाई का लक्ष्य प्राप्त करने वाले नंबरवार पवित्र परमात्मा बाप के परिवार के बच्चे जन्म जन्मांतर राजाई कुल में आने वाले, राज्य परिवार में आने वाले कितने हैं? 16,108। हम वो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं जो माया का युद्ध करके इंद्रियों पर जीत पाते हैं। जीत पाते हैं तो तुम पवित्र रहकर के मालिक बनते हैं दुनिया का, तो तुमको याद भी करना होगा। जो योग सीखा है, याद नहीं करेंगे तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ कायदा है। क्या? पहला पहला कायदा क्या है? कि तुम पवित्र रहकर सुनेंगे। क्या? पवित्र रहकर के सुनेंगे और एक परम पवित्र भगवान से सुनेंगे। भगवान एक होता है या दो चार आठ होते हैं? तो जिस एक को तुमने पहचाना है उस एक से ही पढ़ेंगे, कोई दूसरे से नहीं पढ़ेंगे। पवित्र नहीं रहेंगे तो आज जो सीख जाते हो पांच सात रोज के पीछे पतित बनेंगे, तो तुम्हारी बदनामी दुनिया में बहुत होगी। क्या? तुम्हारी बदनामी दुनिया में बहुत होगी। पीछे तुम्हारे को मत्था मारेगा तो भी तुम उतना ऊंचे पद नहीं पा सकेंगे। क्या? अभी बाप का ज्ञान लेना बंद किया, अब पवित्र बने और राजयोग की पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर तुम्हारे को बहुत मत्था मारना पड़ेगा। क्योंकि कह देते हैं कि तुम पवित्र रहेंगे तो ये तुम्हारी राजाई रहेगी, नहीं तो ये राजाई करने की शक्ति निकल जाएगी। तो तुम पतित बनते तो जो सिखलाया है वो सारा फालतू चला गया। अभी तुमको एक सिखला करके
क्या करें? तुमको एक पवित्रता की बात सिखला करके क्या करें? तुम अगर नहीं रह सकते हो, पवित्र नहीं रह सकते हो, तो तुम यहाँ बताओ क्या पवित्र रह सकते हो? तो आओ, नहीं रह सकते हो तो यहाँ नहीं आओ। और संग दोष, अन्न दोष में आने से अपवित्र बनते हैं। कैसे अपवित्र बनते हैं? संग दोष, अन्न दोष में आने से अपवित्र बनते हैं। तो पतितों के संग रहेंगे, पतितों के वाइब्रेशन में रहेंगे, जिन बहु बेटों ने शादी कर ली, बाप ने तो मना किया, शादी बर्बादी, और उन बर्बादी करने वालों के संग में रहेंगे, उसी वाइब्रेशन में रहेंगे, तो उस संग का क्या रंग लगेगा? पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पतित बनेंगे। और पतितों के हाथ का बना हुआ अन्न खाएंगे तो अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? अन्न दोष लगेगा, अन्न दोष लगेगा, संग दोष लगेगा, तो तुम जरूर पतित बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ नहीं आओ। क्या है? क्या कहते हैं? यहाँ नहीं आओ, क्योंकि यहाँ का लक्ष्य है देवी देवताओं की पवित्र राजधानी स्थापन करना है। कैसी राजधानी स्थापन होगी? पवित्र ब्राह्मणों का संगठन बनेगा या अपवित्रों का संगठन बनेगा? है, पवित्र ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उनका संगठन बनना है। तो बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, क्योंकि नई दुनिया की देवी देवताओं की पवित्र राजधानी संगम युग में स्थापन होनी है। होनी है कि नहीं है? होनी है। तो उस पवित्र राजधानी में जो अपवित्र होते रहते हैं अब तक भी संग दोष अन्न दोष में, वो आएंगे, आएंगे हैं? नहीं आएंगे। तो पढ़ाई पढ़ने का फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा राजयोग का अभ्यास फालतू न चला जाए और बाप की मेहनत भी व्यर्थ न चली जाए। अभी तुमको एक पवित्रता की बात सिखला कर फिर कहते हैं, फिर कहते हैं अगर तुम पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ नहीं आओ, क्योंकि मूल बात है पवित्रता की। पढ़ाई किस लिए है? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा को देवता बनाने भगवान आया। क्या गायन है? नर को नारायण जैसा पवित्र 16 कला संपूर्ण बनाने आया है। आता ही है, हर कल्प में आता है, और तुम अपवित्र बनते रहे। अब अंतिम समय आ गया, कैसे बताया? तुम बच्चे जो अपवित्र बने हो उनको पतित से पावन बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो कितना टाइम पूरा हो गया है? और 17-18 में 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो कितना टाइम रह गया है? है 10 वर्ष रह गए। 2017-18 में 40 वर्ष पूरे होंगे और भगवान बाप कहते हैं मैं आता हूं तो धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं एक सेकंड में। जो गायन है राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो जीवन मुक्ति जो है पवित्र दुनिया में मिली या पवित्र दुनिया में मिली? पवित्र दुनिया में पवित्र देवताओं की राजधानी होगी, राजा रानी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो जब से ये पवित्र राजधानी स्थापन होती है इस दुनिया में तब से गाया जाता है संबत एक एक एक, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संबत एक एक एक। तो टाइम कब का बता दिया? अरे 17-18 40 वर्ष पूरे होते हैं, राजधानी पक्की स्थापन हो जाती है और आज से 10 साल पहले 2004-05 के बीच अव्यक्तवाणी में बोल दिया था। क्या? बाप ने तुम बच्चों को क्या दिया है? नई दुनिया का सौगात दिया हुआ है। तो नई दुनिया का जो सौगात, नई दुनिया की जो फाउंडेशन पड़ रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस सौगात में, उस संगठन में तुम बच्चे आना जाना करते हो। नई दुनिया की राजधानी कहाँ स्थापन होती है? है? संगम तो समय का नाम है, स्थान बताओ। है? नेपाल। हो, नेपाल तो भक्ति मार्ग का नाम रखा हुआ है। नई दुनिया नए ब्राह्मणों के संगठन को नाम दिया हुआ है। वो संगठन कहाँ स्थापन हो रहा है? अभी 15-11-16 की अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया, अव्यक्त बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं और 10 साल पहले बता दिया कि तुम बच्चों को नई दुनिया का सौगात दे रहे हैं। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो। वो नई दुनिया कहाँ बनेगी? दिल्ली, दिल्ली।, दिल्ली तो आना जाना नहीं करते? करते हैं। सबको जाना पड़ेगा, ये भी बोला। क्या? जो भी ब्राह्मण हैं, कच्चे ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, 9 कुरियों में से कोई भी कुरी के ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मणों को दिल्ली में जाना पड़ेगा। कोई आगे जाएंगे, कोई पीछे जाएंगे। तो बोला कि पवित्र रहने की नॉलेज धारण करो, अपवित्र बनेंगे तो ये नॉलेज निकल जाएगी। तो तुम पतित बनते हो, वो सीखा हुआ सारा फालतू गया। तुम अभी एक बात तुमको जो सिखलाते हैं, अगर तुम पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ नहीं आओ। क्योंकि मूल बात है पवित्रता की,
परवाह कोई की थोड़े ही रखने चाहिए। क्या कहा? पवित्र देवी देवता बनने के लिए, ये पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई की परवाह नहीं करनी है। ये हमारा पति परमेश्वर है, ये हमको ऑर्डर देगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं ऑर्डर देगा तो नहीं पढ़ेंगे। अरे बाप ने तो बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। क्या बोला है? अगर नर से नारायण जैसा, नारी से नारायणी जैसा पवित्र देवी देवता बनना है तो लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? किसी की भी परवाह नहीं करना चाहिए इस दुनिया में, समाज में, गवर्नमेंट में। कोई कितना भी रोकने वाला हो उनकी परवाह नहीं करनी है। पहले पहली प्रतिज्ञा है ही हमारी पावन बनने की, उसमें भी जो एक तो पवित्र रहे, दूसरा उसको बताना है कि तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ है, वो पापों का बोझ याद करने से ही खत्म होगा। अगर याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे ऊपर और ही 100 गुना दंड चढ़ेगा। क्या? पिछले जन्मों में जो कर्मेंद्रियों से पाप किए हैं उनका 1 गुना बोझा चढ़ा है, और अभी भगवान बाप के बच्चे बनकर के, ज्ञान में आकर के, समझदार बनकर के अगर तुम वही पतित पने के पाप करते रहेंगे तो क्या होगा? कितना बोझा चढ़ेगा? 100 गुना बोझा चढ़ेगा। फिर तो वो पुरुषार्थ करने की कोई बात भी नहीं रहेगी। क्या? 63 जन्म का 1 गुना बोझा चढ़ा है तो पुरुषार्थ करने की बात है, पास भी हो सकते हैं, होंगे कि नहीं? और 100 गुना बोझा चढ़ जाए तो क्या होगा? फिर तुम उतना ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे। तो अभी याद करने से ही तुम्हारा पाप का बोझा उतरेगा। तो जो अपवित्र होते हैं उनको समझा देना चाहिए, ये जो सेकंड में जीवन मुक्ति राजा जनक की गाई हुई है, जनक माने जन माने जन्म, का माने करने वाला, जनक माने जन्म देने वाला, जनक माने पिता। क्या करता है? जन्म देता है। तो क्या एक जनक की बात है या तुम सब जनक हो? है? तुम सब जनक हो जन्म जन्मांतर के? बाप का कर्म किया है या नहीं किया है? है? बाप के रूप में सृष्टि चलाने के लिए तुमने बीज बोया है या नहीं बोया है? बोया है। तो तुम सब जनक हो। कोई अब्बल नंबर का जनक और कोई नंबर वार जनक। उन सभी जनक नाम वारधारियों को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। क्या? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो क्या वो जनक नामधारी
पवित्र दुनिया के उस राजधानी में नहीं आवेंगे, पवित्र दुनिया की राजधानी में आए बगैर वो जनक मिसल एक सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे? करेंगे? नहीं कर सकते। बाप को याद करें और जो बाप कहे, क्या कहा, क्या कहा, एक तो बाप को याद करें और दूसरा जो बाप कहे वो करें, है दूसरे की बात को न माने। अभी जो हम तुमको कहेंगे सो ही तुम करेंगे, क्योंकि पावन तो जरूर रहना है, उसमें भी नंबर वन तुम्हारी बात है पावन रहने की। क्या तुम सूर्यवंशी हो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कम कुरी के ब्राह्मण वो नंबर वन अल्लाह के द्वारा स्थापन किए हुए अल्लाह वल दीन में नहीं आ पाते? मुसलमानों में भी गायन है अल्लाह वल दीन, अल्लाह ने आकर क्या किया, अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, तो तुम अव्वल नंबर धर्म में आने वाले हो, तुम्हारे लिए नंबर वन की बात है। तुम ब्राह्मण ऊंचते ऊंचे चोटी के ब्राह्मण हो, कैसे ब्राह्मण, चोटी के ब्राह्मण हो, पावन हो, क्योंकि तुम कहते हो ना, देखो सारी दुनिया बुलाती है कि हे पतित पावन आओ। पतित का अर्थ यह है कि विकार में न जाओ, क्या कहा, पतित का अर्थ क्या बताया है, विकार, वी माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कर्मेंद्रियों से कर्म करना सिखाया है उस कर्म के विपरीत न जाओ। भगवान ने सिखाया ही है, थ्योरी ही दी है या प्रैक्टिकल करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जिसकी यादगार मंदिर में बनी हुई है, कौन से मंदिर में, शिवलिंग मंदिर में बनी हुई है, तो बताते हैं कि विकार में न जाओ, विपरीत कार्य में न जाओ। कर्म इंद्रियों से जो तुम कार्य करते हो, खास काम इंद्रिय से जो तुम सुख भोगने का कार्य करते हो, उसमें विपरीत कार्य मत करो, श्रीमत के विपरीत कार्य न करो। श्रीमत क्या कहती है, सुख लेना है सुख देना है, इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है कि बिना इंद्रियों के, इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है, इंद्रियों से ही सुख दी दुख दिया जाता है, तो क्या न करो, इंद्रियों से दुख न दो। और खास कौन सी इंद्रिय, काम इंद्रिय, काम इंद्रिय से दुख देने का काम वो पुरुष जिनको दुर्योधन दुशासन कहा है वो करते हैं या स्त्रियां करती हैं, पुरुष करते हैं। फिर स्त्रियां जब आदि हो जाती हैं तो वो विकृत इंद्रियों का सुख भोगे बगैर रह नहीं सकते हैं, तो आधीन हो जाती है। क्या पुरुष कितनी भी पिटाइयां भी करता है तो भी उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो विकारी सुख भोगने की आदि हो गई, राक्षसी सुख है राक्षसों का, जो द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होता है। सतयुग त्रेता में देवताएं वो राक्षसी कर्म नहीं करते थे। तो ऐसे विकार में न जाओ, विपरीत कार्य में न जाओ। काहे के विपरीत? श्रीमत के विपरीत कार्य में न जाओ। श्रीमत है सुख लेना है, सुख देना है, दुख नहीं लेना है, दुख नहीं देना है। लेकिन बात समझ में नहीं आती है। क्या क्या बात समझ में नहीं आती है? बाप कहते हैं इस दुनिया में सब पतित हैं, कली की दुनिया में या कोई पावन है, सब पतित हैं, मनुष्य पतित हैं, दुखदाई राक्षस पतित हैं, जानवर पतित हैं, पशु पक्षी कीड़े मतोंगे सब पतित हैं। शक्ति छीण होती है या नहीं? तो पतित हुए ना, शक्ति पात किया ना, सब पतित हैं। तो जब सब पतित हैं तो बाप कहते हैं पतित दुनिया में पतित तो सब होते हैं। क्या कहा? पतित तो सब होते हैं, लेकिन एक के साथ पतित होना है, अनेकों के साथ पतित होना ये बेकायदे है। ये मुरली का महावाक्य है। क्या क्या कहा? बल पतित बनते हैं, वो तो इस पतित दुनिया का कायदा है। क्या क्या कायदा है? जैसे बच्चे हैं ना, पार्क में एक सीढ़ी होती है, पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर आराम से नीचे उतरते हैं, तो दुनिया का कायदा है। 16 कला संपूर्ण से कलाहीनता की ओर नीचे जाते हैं या नहीं जाते हैं? पतित सो सब बनते हैं, खास कली की दुनिया में। परंतु कायदा क्या है? एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे है, व्यभिचार है, वैश्यालय बनाना है। अनेकों के साथ पतित बनेंगे तो वैश्यालय बनेगा या शिवालय बनेगा? वैश्यालय बनेगा। वैश्या को अनेकों की मक्खनबाजी करनी पड़ती है कि जो सधवा स्त्री होती है वो अनेकों की मक्खनबाजी करती है, जो सधवा है वो एक की मक्खनबाजी करेगी, एक को पति परमेश्वर मानेगी, और जो वैश्या बनती है वो क्या करती है? है जो आएगा उसकी चिरौरी करेगी, उसको मान्यता देगी, मान्यता नहीं देगी तो पैसे पैसे नहीं देगा। वैश्या के पास जो आते हैं किस लिए आते हैं? है विचार का सुख भोगने के लिए आते हैं, और वैश्या उनसे धन लेती है, पैसे के लिए सारा विचार का पतित कर्म करती है। भगवान बाप आते हैं, शिवालय बनाते हैं इस दुनिया को, और वैश्याएं क्या करती है? इस दुनिया को वैश्या वैश्यालय बनाती है। तो बाप कहते हैं तुम जानते हो कि ये देवताएं मंदिर में बैठे हैं वो निर्विकारी हैं, और हम अभी क्या हैं? निर्विकारी देवता हैं या विकारी हैं? हम विकारी हैं। ये देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तो जो पतित है वो भी पुजारी है, और ये देवताएं भी चैतन्य हैं, ये जड़ हैं, इनकी बुद्धि भी जड़त्वमयी हो गई, दूसरे धर्मों के संग के रंग में आकर के जो भी भारतवासी थे वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? दूसरे देश के लोग कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट होते हैं, या भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए? हिस्ट्री क्या कहती है? भारतवासी जो देवी देवताएं थे वो देवात्मा ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती है, खास करके कच्चे कुरी के ब्राह्मण सो देवता कन्वर्ट होते हैं, कम कलाओं वाले। क्या कौन कन्वर्ट होते हैं? कच्चे कुरी के ब्राह्मण सो देवता बनने वाले कम कुरी के देवता कन्वर्ट होते हैं, और जो 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते, सच रूपी वृक्ष में सीधे तने में जाते हैं, इधर उधर है इधर उधर कन्वर्ट नहीं होते। तो सभी पुजारी हैं, साधु संत महात्मा सभी पतित हैं, क्योंकि एवर प्योर भगवान को बुलाते हैं। अभी पावन करने वाला तो एक ही है, क्या कहा? संग के रंग से पवित्र बनाने वाला कौन है? है एक ही संग के रंग से पवित्र बनाने वाला है, चाहे दृष्टि के संग से पवित्र बनाए, चाहे मन बुद्धि के वाइब्रेशन से पवित्र बनाए, चाहे कानों से ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाए, चाहे मुख द्वारा पवित्र बनाए, और चाहे जो संपूर्ण समर्पण होते हैं तन से, होते हैं कि नहीं? तन से संपूर्ण समर्पण, इसलिए मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े, पूरा अर्पण करना पड़े। मन कान अर्पण कर दे, नाक अर्पण न करें तो चलेगा? है नहीं, नाक आंख कान हाथ पांव जो भी 9-10 इंद्रियां हैं सब अर्पण करना पड़े ईश्वर बाप के सन्मुख। क्या कहा? मुरली का महावाक्य, भगवान का महावाक्य, गीता ज्ञान। क्या क्या बोलता है? तन भी पूरा पूरा अर्पण करना पड़े। तो ऐसा पावन बनाने वाला एक ही है। क्या? ऐसा पावन बनाने वाला एक ही है जो पावन बना करके देवी देवताओं के, राजा महाराजा बनने वालों के परिवार में ले जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे परिवार की भांति बनते हो। बाकी वो पावन बनाने वाला कोई ब्रह्म तो नहीं है? माना ब्रह्मा नामधारी कोई पावन बनाने वाला है? नहीं, पावन बनाने वाला तो एक ही है जिसकी आत्मा का नाम शिव है, बिंदु का नाम शिव है। ब्रह्मा शरीरधारी का नाम है या सिर्फ बिंदु का नाम है? शरीरधारी का नाम है। ओम शांति।